पांच अथर्ववेद के पांच उपवेद गोपथ ब्राह्मण में अथर्ववेद के पांच उपवेद का उल्लेख है। ये हैं एक सर्ववेद, इसमें सर्पों के भेद, सर्प विष, चिकित्सा आदि का वर्णन है। दो पिशाच वेद, इसमें पिशाचों या राक्षसों की विविध चेष्टाओं आदि का वर्णन है। तीन असुर वेद, अथर्ववेद में असुरों को या तो धान कहा गया है, ये या तो जादू टोना आदि में विश्वास करते थे, इनके विविध क्रियाकलापों का इसमें वर्णन है। चार इतिहास वेद, इसमें प्राचीन समुद्र विज्ञान को भी सम्मिलित किया है। पांच पुराण वेद, इसमें पुराण ग्रंथ आते हैं, इनमें सृष्टि उत्पत्ति, देव और ऋषियों की वंशावली, मनवंतरों का वर्णन, सूर्य और चंद्रवंशी राजाओं का जीवन चरित आदि का वर्णन है। शतपथ ब्राह्मण ने पुराण वेद में जंतु विज्ञान, पशु पक्षी विज्ञान का भी समावेश किया है। शतपथ ब्राह्मण में भी इन पांच उपवेदों के ये नाम दिए हैं। एक सर्प विद्या वेद, दो देवजन विद्या वेद, तीन माया वेद, चार इतिहास वेद, पांच पुराण वेद। माया वेद में ही बाद में शिल्प विज्ञान को भी सम्मिलित किया गया। इन पांच उपवेदों में से केवल इतिहास ग्रंथ और पुराण ग्रंथ ही प्राप्य हैं, शेष उपवेद अप्राप्य हैं। छ अथर्ववेद का संकलन वैशिष्ट्य। अथर्ववेद के परीक्षण से ज्ञात होता है कि इसके संकलन में कुछ विशेषताएं हैं। इसमें कहीं पर मंत्रों की संख्या के आधार पर कांडों का विभाजन है और कहीं पर विषय की दृष्टि से। इस प्रकार अथर्ववेद को चार भागों में बांटा जा सकता है। एक कांड एक से सात तक, इन कांडों के प्रत्येक सूक्त में मंत्रों की संख्या पर ध्यान रखा गया है। जैसे कांड एक में प्रत्येक सूक्त में प्रायः चार मंत्र हैं, कांड दो में प्रायः पांच मंत्र, कांड तीन में छह मंत्र, कांड चार में सात मंत्र और कांड पांच में आठ मंत्र। इससे ज्ञात होता है कि कांड एक से पांच तक प्रत्येक कांड में सूक्त के अंतर्गत मंत्रों की संख्या बढ़ती गई है। कांड छह में प्रत्येक सूक्त में प्रायः तीन मंत्र हैं और कांड सात में एक या दो मंत्र हैं। कांड एक से छह में यह भी विशेषता है कि प्रत्येक कांड में मंत्र संख्या का योग बढ़ता गया है। जैसे कांड एक में 153, कांड दो में 207, कांड तीन में 230, कांड चार में 324, कांड पांच में 376 और कांड छह में 454। दो कांड आठ से बारह, इन कांडों में अधिक मंत्रों वाले सूक्त हैं परंतु विषय भिन्न है। तीन कांड तेरह से अठारह, इन कांडों में भी अधिक मंत्रों वाले सूक्त हैं परंतु इनका विषय प्राय एक ही है। जैसे कांड तेरह में अध्यात्म, कांड चौदह में विवाह, कांड अठारह में पितृमेध। चार कांड उन्नीस और बीस, ये दोनों कांड प्रक्षिप्त ज्ञात होते हैं। पंच पटलिका और शौनकीय चतुराध्यायिका में अथर्ववेद के केवल 18 कांडों का ही उल्लेख है। कौशिक गृहसूत्र और वैतान श्रौत सूत्र में भी केवल 18 कांडों के ही मंत्र प्रतीक के रूप में उद्घृत हैं। इस विषय में पर्याप्त मतभेद है कि अथर्ववेद के मौलिक कांड कितने हैं। कोई मूल कांड 13 मानते हैं, कोई 18 और कोई 19 और कोई पूरे 20। अथर्ववेद के कांड 20 के प्रायः सभी मंत्र ऋग्वेद के इंद्र विषयक सूक्तों से लिए गए हैं। प्रोफेसर मैकडोनल का भी मत है। प्रोफेसर मैकडोनल ने अथर्ववेद के विषय में ये विचार व्यक्त किए हैं। एक मूल अथर्ववेद में केवल 13 कांड थे। यह रचना शैली एवं एक विषय विवेचन की दृष्टि से कहा जा सकता है। दो कांड 13 के बाद विषयों में एक रूपता एवं क्रमबद्धता है जो 13 कांडों में अप्राप्य है। जैसे कांड 14 में विवाह संस्कार, कांड 15 में व्रात्य वर्णन, कांड 16-17 में सम्मोहन मंत्र, कांड 18 में अंत्येष्टि, कांड 15-16 में ब्राह्मणों के तुल्य गद्य शैली में है, कांड 16 एवं 17 बहुत छोटे हैं। तीन कांड 19 और 20 बाद में जोड़े गए हैं। कांड 19 में कुछ अंश परिशिष्ट के तुल्य हैं और कुछ अंशों में पाठ भ्रष्ट है। कांड 20 के प्राय सभी सूक्त इंद्र स्तुति परक हैं और ऋग्वेद से संग्रहित हैं। अथर्ववेद की परंपरा के विरुद्ध अंतिम अध्यायों में सोमयाग वर्णित है। यह अथर्ववेद के चतुर्थ वेद का स्थान दिलाने का प्रयत्न है। सात अथर्ववेद का प्रतिपाद्य विषय। प्रोफेसर ब्लूमफील्ड और प्रोफेसर विंटरनिट्स ने अथर्ववेद का पूरा नाम अथर्वांगिरस वेद माना है और इसकी व्याख्या इस प्रकार की है। अवेस्ता का अथर्वन शब्द अथर्वन का प्रतिनिधि है। इसका अर्थ है पुरोहित, यह अग्नि की पूजा करता था। अथर्ववेद भी अग्नि पूजा या यज्ञ में विश्वास करता है। अवेस्ता का अथर्वण पौरोहित्य के साथ जादू का भी काम करता था। अंगिरस प्रागैतिहासिक काल के पुरोहित हैं। दोनों यज्ञ के साथ ही जादू में भी निपुण थे। अथर्वण और अंगिरसों में भेद यह है कि अथर्वण के मंत्रों में सुख शांति और अच्छाई वाले जादू हैं। इनमें रोग निवारण आदि के लिए भी मंत्र हैं। अंगिरस मंत्रों में कृत्या प्रयोग, अभिचार कर्म और शत्रुनाशन आदि के मंत्र हैं। कांडों के अनुसार प्रतिपाद्य विषय संक्षेप में इस प्रकार हैं। कांड एक, विविध रोगों की निवृत्ति, पाश मोचन, रक्षोनाशन, शर्म प्राप्ति आदि। कांड दो, रोगनाशन, शत्रु एवं कृमिनाशन, दीर्घायुष्य प्राप्ति। कांड तीन, शत्रु सेना सम्मोहन, राजा का निर्वचन, शाला निर्माण, कृषि एवं पशुपालन। कांड चार, ब्रह्म विद्या, विषनाशन, राज्याभिषेक, वृष्टि, पापमोचन, ब्रह्मोदन का वर्णन। कांड पांच, ब्रह्म विद्या, कृत्या परिहार। कांड छह, दुःस्वप्न नाशन, अन्न समृद्धि। कांड सात, आत्मा का वर्णन। कांड आठ, प्रतिसर मणि, विराट ब्रह्म का वर्णन। कांड नौ, मधु विद्या, पंचौदन, अज, अतिथि सत्कार, गाय का महत्व, यक्ष्मनाशन, कृत्या निवारण, ब्रह्म विद्या एवं वर्ण मणि का वर्णन, सर्प विष नाशन, ज्येष्ठ ब्राह्मण का महत्व। कांड ग्यारह, ब्रह्मोदन, रुद्र, ब्रह्मचर्य सूक्त। कांड बारह, पृथ्वी सूक्त, भूमि का महत्व। कांड तेरह, अध्यात्म वर्णन। कांड चौदह, विवाह संस्कार। कांड पंद्रह, व्रात्य ब्रह्म का वर्णन। कांड सोलह, दुख मोचन। कांड सत्रह, अभ्युदय के लिए प्रार्थना सम्मोहन। कांड अठारह, पितृमेध। कांड उन्नीस, यज्ञ, नक्षत्रों के नाम, विविध मणियां, छंदों के नाम, राष्ट्र का वर्णन, हिरण्य धारण, सुरक्षा, रात्रि काम और काल का महत्व, दीर्घायुष्य। कांड बीस, सोमयाग वर्णन, इंद्र स्तुति, कुंताप सूक्त। सूक्त 127-136 में राजा परीक्षित ने राज्य शासन का आदि का वर्णन है। आठ, वेद त्रयी और वेद चतुष्टयी। पाश्चात्य विद्वानों ने विशेष बलपूर्वक पर मत व्यक्त किया है कि प्रारंभ में तीन ही वेद थे, अथर्वेदवाद की रचना है, तथा बाद में इसे चार वेदों में सम्मिलित किया गया है। उन्होंने जो तर्क उपस्थित किए हैं उनका विशेष आधार है ऋग्वेद आदि में अथर्वेद का उल्लेख न होना, परंतु ऋग्वेद आदि की आंतरिक परीक्षा से ज्ञात होता है कि ये तर्क अपुष्ट हैं। संक्षेप में इसके कारण निम्नलिखित हैं। एक, पूर्व मीमांसा का विवेचन। पूर्व मीमांसा ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि त्रयी नाम ग्रंथों पर निर्भर न होकर विषयों पर निर्भर है। पद्य बंध या पद्यात्मक रचना को ऋग कहते हैं, गीति को साम कहते हैं और गद्यात्मक रचना को यजुः। अतः अथर्वेद का इन तीन विधाओं में सामवेद होने के कारण पृथक उल्लेख नहीं है। दो, ऋग्वेद में अथर्वा का उल्लेख। ऋग्वेद में अथर्वा का 15 बार उल्लेख है। उसमें अथर्वा, अथर्वाण, अथर्वभ्य आदि शब्दों का प्रयोग है। इससे ज्ञात होता है कि ऋग्वेद में केवल अथर्वा ऋषि ही नहीं अपितु उनके वंशजों का भी अथर्वाण आदि शब्दों से उल्लेख है। इतना ही नहीं, ऋग्वेद में उसे यज्ञ विद्या का प्रवर्तक, अग्नि का प्रथम आविष्कारक तथा जलीय विद्युत का आविष्कारक बताया गया है। तीन, ऋग्वेद में अथर्वेद के ऋषि। ऋग्वेद में अथर्वेदीय ऋषि भृगु और अंगिरा के परिवार के क्रमशः 12 और 45 अर्थात 57 ऋषि मंत्र दृष्टा हैं। इनके मंत्रों की संख्या सहस्त्रों में है। इससे ज्ञात होता है कि ऋग्वेद ही अथर्वेदीय ऋषियों का ऋणी है। चार, यज्ञ में ब्रह्मा का महत्व। ऋग्वेद में चार ऋतुजों में ब्रह्मा को ब्रह्म विद्या के उपदेशार्थ प्रतिष्ठित किया गया है। चारों वेदों में कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि ब्रह्म के बिना यज्ञ संभव हो। यज्ञ ही ऋग्वेद का आधार है। ब्रह्मा के लिए अनिवार्य है कि वह अथर्वेदवित हो। इस प्रकार यज्ञ और ब्रह्मा परस्पर अनुस्यूत हैं। जहाँ ब्रह्मा है वहाँ अथर्वेद भी है। पाँच, ऋग और यजुः में अथर्वेद का उल्लेख। ऋग्वेद और यजुर्वेद में चारों वेदों का उल्लेख करते हुए अथर्वेद के लिए छंदासी शब्द आया है। छह, ब्राह्मण और उपनिषद ग्रंथों में अथर्वेद का उल्लेख है। गोपद, ब्राह्मण, छांदोग्य, बृहदारण्यक, मुंडक, मौक्तिक आदि उपनिषदों में स्पष्ट रूप से चार वेदों का उल्लेख है। सात, अथर्वेद का नामोल्लेख न होने का कारण यज्ञ का ऋग, यजुः और साम इन तीन वेदों से साक्षात संबंध है। इन तीनों वेदों के पाठ, गान और कर्मकांड के लिए होता, उद्गाता और अध्वर्यु इन तीन ऋतुजों की नियुक्ति होती है। अथर्वेद का मुख्य विषय यज्ञ नहीं है, अतः उसके मंत्रों का पाठ यज्ञों में नहीं होता है। अतएव तीन वेदों के साथ उसका सर्वत्र उल्लेख नहीं होता है। यज्ञ का स्वारस्य अध्यात्म है, वह अथर्वेद का विषय है, उसका विशेषज्ञ ब्रह्मा होता है, वही अध्यात्म की व्याख्या करता है, अतएव ब्रह्मा ही यज्ञ का अधिष्ठाता और निर्देशक होता है। 9. अथर्वा, अथर्वन महान वैज्ञानिक एवं दार्शनिक। वैदिक वाङ्मय में अथर्वा का बहुत महत्व है। ऋग्यजु और साम तीनों वेद उसका गुणगान करते हैं। इसके प्रमुख कारण ये हैं। एक, अथर्वा ने सर्वप्रथम अग्नि का आविष्कार किया। मंत्रों से ज्ञात होता है कि अथर्वा ने अरणि मंथन से अग्नि का और जल मंथन से जलीय विद्युत का आविष्कार किया। 2. अथर्वा ने उत्खनन के द्वारा पुरुष्य अग्नि प्राकृतिक गैस अर्थात ऑयल एंड नेचुरल गैस का आविष्कार किया। 3. अथर्वा ने सर्वप्रथम यज्ञ कार्य में अग्नि का प्रयोग किया था। 4. वह वैदिक कर्मकांड यज्ञ विधि एवं वैदिक तत्व मीमांसा का प्रचारक और निदेशक रहा। अध्यात्म चिंतन और अध्यात्म वर्णन उसकी मुख्यता थी। 5. अथर्वा का दृष्टिकोण संकीर्ण न होकर व्यापक था। वह कर्मकांड तक ही सीमित न था। उसने आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, दार्शनिक, शास्त्रीय और आयुर्वेदिक आदि सभी विषयों का अपनी सूक्ष्म दृष्टि से चिंतन और विवेचन किया है। 10. अथर्वेद संक्षिप्त और वैदिक विश्वकोश। अथर्वेद में वर्णित विषयों पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि यह वेद गागर में सागर है। वैदिक काल का ऐसा कोई विषय इसमें नहीं छूटा है जिसका तात्कालीन किसी वेद आदि में उल्लेख हो। यद्यपि कुछ विषयों पर बहुत विस्तृत विवेचन नहीं है, तथापि उनका सूत्र रूप में वर्णन है। अतः अथर्वेद को संक्षिप्त वैदिक विश्वकोश की संज्ञा दी जा सकती है। अथर्वेद में वर्णित दार्शनिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विषय तथा शिक्षा, विज्ञान, आयुर्वेद आदि के कतिपय संदर्भ संकेत रूप में यहाँ दिए जा रहे हैं। कोष्ठ में अथर्वेद के कांड और सूक्तों की संख्या दी गई है। विशेष विवरण के लिए उन संदर्भों का अवलोकन करें। 1. दार्शनिक वर्णन विराट ब्रह्म अथर्ववेद 8-9, 8-10, 9-10, 19-6 ब्रह्म 4-14, 5-2, 19-42 वाक तत्व 2-1-4-1 ब्रह्म और माया 10-8 माया और माई 8-9 उच्छिष्ट ब्रह्म 10-90 ईश्वर 4-2-4-14 7-14 7-22 सूत्र आत्मा 10-8 एकेश्वर वाद 13-4 स्कंभ ब्रह्म 10-7 रोहित ब्रह्म 13-1 यज्ञ 8-9-10 7 त्रैतवाद 9-9 जीवात्मा 9-10 10-8 प्रकृति 9-10 10-8 व्रात्य ब्रह्म कांड 15 पुनर्जन्म 9-10 10-8 स्वर्ग 19-15 नरक 12-4 मधु कषाया मधु विद्या 1-34 9-1 मनोविज्ञान 1-1 6-41 1 7-5 19-9 स्वप्न विज्ञान 6-46 19-57 2 राजनीतिक वर्णन राष्ट्र 12-1-13-1 राष्ट्र में समानाधिकार 12-1-15 राष्ट्रीय एकता 3-8-3 देश रक्षा 12-1-7 राजा के कर्तव्य 4-8-2 6-87-2 मित्र राष्ट्र 6-88-3 जन राज्य 20-21-9 ग्राम पंचायत 4-7-5 सैनिक शासन के दोष 6-99-2 राजा परीक्षित की शासन व्यवस्था 20-127 1-14 राजा का निर्वाचन प्रजा के द्वारा 3-41-7 6-87-1-3 राजा का निर्वाचन सर्वसम्मति से 20-54-1 राजा का निर्वाचन समिति के द्वारा 4-19-24 राजा को गद्दी से हटाना 3-8-2 राजा और राजकृत 3-5-6-7 राज्याभिषेक 1-9-1 और 30-4-8 सभा और समिति 7-12-1-4 संसद का स्वरूप 7-12-3 संसद के 7 विभाग 20-110-2 राजकीय आय के साधन 1-15-3-3-4-7 न्याय और दंड विधान 19-49-9-10 सेना और सेनापति 1-27-1 शस्त्रास्त्र आग्नेय अस्त्र 6-67-2 बारूद 8-8-2 शीशे की गोलियां 1-16-2-4 3 सामाजिक वर्णन पंच जन 3-21-5 जाति बहिष्कार 20-116-1 ब्रह्मचारी के कर्तव्य आदि 5-17-11-5 स्त्री के अधिकार 20-126-9 और 10 दहेज 2 36:7, 5:17, 3 सूती रेशमी और ऊनी वस्त्र 14:1-27, 14:2-50, 18:3-49, 18:4-31 स्वर्ण के आभूषण 5:17-14, 20:130-9 शाला निर्माण 3:12 संगीत और नृत्य 6:126-2 और 3 11:8-24, 12:1-41, 20:132-8 अभिनय 12:1-41, 4 आर्थिक वर्णन कृषि 3:17, 1:9 खाद डालना 3:14, 3 6 या 8 बैलों वाले बड़े हल 6:91, 1:8, 9:16 व्यापार और वाणिज्य 3:15 समुद्री व्यापार 17:1-26 मणिरत्न सुवर्ण आदि धातुएं 4:10, 5:1-17, 5:28-1, 19:26-2 मुद्राएं 4:14-3, 20:127-3 5 आयुर्वेद शरीर के अंग 2:33, 1:7, 20:96, 17:23 रोगों के नाम 9:8 जल चिकित्सा 4:4-5 ज्वर यक्ष्मा खांसी कुष्ठ हृदय रोग क्षेत्रीय रोगों की चिकित्सा 1:12, 1:22, 1:23, 1:25 6:96, 6:105 आदि सूर्य किरण चिकित्सा 9:8, 22 मृत चिकित्सा 2:3-4 हस्त स्पर्श चिकित्सा 4:13, 6 और 7 6 शिक्षा एवं विज्ञान शिक्षा 7:61 शिक्षा विधि 1:1 शिक्षक 20:21 ज्योतिष 13:2, 13:3 नक्षत्र 19:7, 19:8 रसायन विज्ञान 2:29, 1 वनस्पति विज्ञान 10:8, 31 आकाश मार्ग से यात्रा 3:15, 2 सूर्य की किरणों से ऊर्जा 3:31, 7:4, 38, 5 सौर ऊर्जा 8:10, 5:3-4 वातानुकूलित भवन 6:106-3 समुद्री पोत 17:1-25-26 सैकड़ों सूर्यों की सत्या 20:81 पृथ्वी द्वारा सूर्य की प्रदक्षिणा 20:48-4 21 प्रकार के मरुत गैस 13:1-3 7 अभिचार कर्म इंद्रजाल 8:8-1-24 कृत्या प्रयोग या जादू टोना 4:17, 4:18, 3:2-7, 5 झाड़ फूक 3:9-5 विविध मणियों से रोगनाशन कांड 19 कृत्या प्रयोग के 4 भेद 8:5-9 पतिवशीकरण 7:38 अभिचार यज्ञ 3:19-2 कृत्या परिहार 4:18, 4:19 वशीकरण 2:30, 3:25 स्वापन या सम्मोहन 4:5 वाजीकरण 4:4, 6:101 नारी सुख प्रसूति 1:11 वंध्यात्व नाशन और पुत्र प्राप्ति 2:3-23 10 अथर्वेद का रचनाकाल ऋग्वेद के रचनाकाल के तुल्य अथर्वेद के रचनाकाल का प्रश्न भी जटिल है। इस विषय में मतैक्य नहीं है। इस विषय में 2 विचारधाराएं हैं, 1 भारतीय परंपरागत विचारधारा, 2 पाश्चात्य विद्वानों की विचारधारा। 1 भारतीय विचारधारा इस पक्ष के समर्थकों का कथन है कि वेद अपौरुषेय और अनादि हैं। मानव जाति के विकास के साथ इनका प्रादुर्भाव हुआ है। परमात्मा ने अग्नि वायु आदित्य और अंगिरस ऋषियों को क्रमशः ऋक यजु साम और अथर्वेदों का ज्ञान दिया। उसी परंपरा से वेद आज तक अछूत चले आ रहे हैं। अतः इन वेदों का कोई समय निर्धारित नहीं किया जा सकता। यह सृष्टि के प्रारंभ से इसी रूप में है। भारतीय परंपरावादी आचार्य इसी मत के समर्थक हैं। 2 पाश्चात्य विचारधारा पाश्चात्य तथा कतिपय भारतीय विद्वान पूर्वोक्त विचारधारा से सहमत नहीं है। वे वेदों का समय ऐतिहासिक सामाजिक एवं भाषा वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर निर्धारित करते हैं। उनके मतानुसार ऋग्वेद मानव जाति का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है। अन्य वेद उसके बाद बने हैं। ऐतिहासिक भौगोलिक एवं भाषा वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर वे अथर्वेद को ऋग्वेद के बाद की रचना मानते हैं। अथर्वेद के समय निर्धारण में कुछ कठिनाइयां हैं। अथर्वेद के मौलिक अंश में ऐतिहासिक तथ्यों का अभाव है। अथर्वेद में जो ऐतिहासिक तत्व मिलता है वह है कुंताप सूक्तों में राजा परीक्षित का नाम और उसके प्रशासन की प्रशंसा। इन सूक्तों को खिल सूक्त कहा जा सकता है। इसका अभिप्राय यह है कि ये सूक्त परिशिष्ट में है। ये बाद में मूल ग्रंथ में जोड़े गए हैं, अतः इनके आधार पर समय निर्धारण नहीं किया जा सकता है। राजा परीक्षित का उल्लेख अथर्वेद के कुंताप सूक्त में राजा परीक्षित का 3 बार उल्लेख है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राजा परीक्षित विश्वजनिन अर्थात सर्वजनहितकारी राजा था। उसके राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी थी। कुंताप सूक्तों में 2 ऐतिहासिक नाम मिलते हैं, प्रतीप और प्रातिसुत्वन। प्रोफेसर रैप्सन ने मत प्रकट किया है कि प्रातिसूत्वन परीक्षित का पौत्र था और प्रतिप्रपौत्र परीक्षित अर्जुन का पौत्र था और अभिमन्यु का पुत्र। इस प्रकार अर्जुन से 5 पीढ़ी का परिचय मिलता है। अर्जुन, अभिमन्यु, परीक्षित, पौत्र, प्रातिप, सुत्वन, प्रतीप। महाभारत के अनुसार युधिष्ठिर ने वनवास जाते समय परीक्षित को गद्दी पर बैठाया था। पार्टीजर, रैप्सन और मजूमदार आदि ने महाभारत युद्ध का समय 1000 ईस्वी पूर्व के लगभग माना है। रैप्सन ने उल्लेख किया है कि महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद परीक्षित हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठा था। प्रोफेसर लुई रेनू ने पुराणों के आधार पर महाभारत युद्ध का समय 1500 ईसा पूर्व माना है और परीक्षित का समय 1400 ईस्वी पूर्व। इसी आधार पर उन्होंने अथर्वेद का समय 1400 ईसा पूर्व माना है। कल्प सूत्रों का उल्लेख। अथर्वेद में 6 बार कल्पों अर्थात कल्प सूत्रों का उल्लेख है। इनमें सभ्य और असभ्य के लक्षण आदि दिए हैं। इससे ज्ञात होता है कि मंत्रों में कल्प सुख शब्द के कल्प सूत्रों धर्म सूत्रों को ग्रहण अभिप्रेत है। कुंताप सूक्तों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि अथर्वेद का संपादन परीक्षित के समय में हुआ है। अतः परीक्षित का नाम बड़े आदर के साथ लिया गया है। परीक्षित का समय 1400 ईसा पूर्व मानने पर अथर्वेद का समय 1400 ईसा पूर्व मानना उचित है। ऋग्वेद और अथर्वेद की तुलना दोनों वेदों के तुलनात्मक अध्ययन से ज्ञात होता है कि अथर्वेद ऋग्वेद के बाद की रचना है। एक, भूगोल ऋग्वेद काल में आर्य बंगाल से परिचित नहीं थे किंतु अथर्वेद काल में बंगाल से परिचित थे। व्याघ्र बंगाल में होता है, उसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है किंतु अथर्वेद में उसका उल्लेख 19 बार है। ऋग्वेद में यौ जौ का उल्लेख है परंतु ब्रीही चावल का उल्लेख नहीं है। अथर्वेद में ब्रीही का उल्लेख 9 बार है। चावल पूर्व में होता है, अतः ऋग्वेद में उसका उल्लेख नहीं है। 2. समाज। ऋग्वेद में केवल एक मंत्र में 4 वर्णों का उल्लेख है परंतु अथर्वेद में चातुर्वर्ण प्रजाबद्ध मूल हो चुकी थी। अथर्वेद में 103 मंत्रों में ब्रह्मगवी अर्थात ब्राह्मण की गाय या ब्राह्मण के धन के हरण करने से होने वाले अनर्थों का विस्तार से वर्णन है। अथर्वेद में वर्णन है कि वशा गाय ब्राह्मण को ही दान में देनी चाहिए, अन्य को नहीं। 3. दर्शन। ऋग्वेद के अधिकांश देवता प्राकृतिक तत्व हैं, उनके गुण धर्म सर्वथा पृथक हैं। अथर्वेद में अग्नि इंद्र आदि अपने मूल गुणों को छोड़कर प्राय एक ही कार्य करते हैं, वह राक्षसों का नाश। इसी प्रकार ब्रह्म, जीव, प्रकृति, सृष्टि, उत्पत्ति आदि दार्शनिक और आध्यात्मिक विषयों पर ऋग्वेद की अपेक्षा अथर्वेद में गूढ़ विवेचन है, यह परकालीनता का द्योतक है। 4. शासन प्रणाली। ऋग्वेद की अपेक्षा अथर्वेद की शासन प्रणाली अधिक विकसित है। इसमें राज्य शासन, सभा समिति, राजा का निर्वाचन आदि विषयों पर अधिक मनन और चिंतन है। 5. ऋग्वेद और अथर्वेद की भाषा। प्रोफेसर बी के घोष ने ऋग्वेद और अथर्वेद की भाषा की तुलना करके सिद्ध किया है कि ऋग्वेद से अथर्वेद की भाषा अधिक विकसित है। इसमें ऋग्वेद में प्राप्त होने वाली प्राचीनता न्यून हो गई है। जैसे क, ऋग्वेद में 2 स्वरों के बीच में आने वाले ड को ल और ढ को ल हो जाता है, अथर्वेद में ड और ढ ही रहता है। ख, ऋग्वेद में ग्रह और ग्रह दोनों का प्रश्न है, जैसे गृहणामी और गृहणामी, अथर्वेद में गृहणामी ही रह गया है। ग, अथर्वेद में तृतीया बहुवचन में एह और ए भी दोनों प्रचलित है, जैसे देव ही देव भी, अथर्वेद में देव ही जैसे प्रयोग ही रह गए हैं। घ, ऋग्वेद में त्वा, त्वाय, त्वी सभी प्रचलित हैं, अथर्वेद में त्वा वाले प्रयोग ही रह गए हैं। ग, लुट वाले प्रयोग अन्वागंता आदि अथर्वेद से ही प्रारंभ होते हैं। च, लिट में आम वाले प्रयोग गम्यांचाकार आदि अथर्वेद से ही प्रारंभ होते हैं। इस प्रकार भाषा शास्त्र की दृष्टि से अथर्वेद की भाषा ऋग्वेद से अधिक विकसित और परवर्ती है। पुराणों और प्रोफेसर लुई के मत को माने समझते हुए पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार अथर्वेद का अपर काल 1400 ईसा पूर्व माना जाता है। 11. अथर्वेद के कुछ महत्वपूर्ण सूक्त। अथर्वेद में महत्वपूर्ण सूक्तों की संख्या अधिक, बहुत अधिक है। यहाँ पर केवल सूक्त वशिष्ठ सूक्तों का ही परिचय दिया जाता है। 1. पृथ्वी सूक्त। अथर्वेद का पृथ्वी सूक्त या भूमि सूक्त अध्याय 12 एक अत्यंत महत्वपूर्ण है। विश्व के किसी भी धर्म ग्रंथ में मातृभूमि का इतना सशक्त वर्णन प्राप्य नहीं है। इस सूक्त के 63 मंत्रों में पृथ्वी को माता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पृथ्वी को रत्नों की खान, पालक, रक्षक और समग्र ऐश्वर्य प्रदान करने वाली कहा गया है। देशवासियों के लिए निर्देश है कि वे देश रक्षार्थ बलिदान होने को उद्यत रहें। पृथ्वी भाषा भेद, धर्म भेद, विचार भेद होने पर भी मानव मात्र को एक परिवार के तुल्य पालती है। पृथ्वी के आधारभूत तत्व हैं सत्य, रित, दीक्षा, तप, तपोमय जीवन, ब्रह्म, आस्तिकता एवं ज्ञानोन्नति एवं यज्ञ, आत्मसमर्पण एवं स्वार्थ त्याग, क माता भूमि, पुत्रो अहम पृथिव्याः, ख वयम तुभ्यं बलिहृतः स्याम, ग जनम विभ्रति बहुधा विवाच, शम नाना धर्माणं पृथ्वी यथौकसम, घ सत्य बृहद ऋतमुग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथ्वीं धारयन्ति। दो ब्रह्मचर्य सूक्त। अथर्वेद में इस सूक्त के 26 मंत्रों में ब्रह्मचर्य, संयम, ब्रह्मचारी के गुण, धर्म, गुरु शिष्य के उदात्त संबंध और अनुशासन के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। ब्रह्मचारी को राष्ट्र की ज्योति और देश का रक्षक बताया गया है। आचार्य राजा युवक वर्ग और कन्याओं को ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य बताया गया है। ब्रह्मचर्य से देवों ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की। राजा ब्रह्मचर्य का पालन करने पर ही राष्ट्र की रक्षा कर सकता है। संयमी आचार्य ही विद्यार्थी को संयमी बना सकता है। पशु पक्षी भी ब्रह्मचर्य का नियम पालन करते हैं। क ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्यु मुपाधनत, ख आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिण मिच्छते, ग ब्रह्मचारी श्रमेण लोकान तपसा पिपरति, घ पशव आरण्याः पक्षीणश्च ये ते जाता ब्रह्मचारिणः। तीन काल सूक्त। अथर्वेद में दो सूक्तों के 15 मंत्रों काल के महत्व पर वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया है। विज्ञान भी काल के महत्व को स्वीकार करता है। काल सृष्टि का कर्ता, धर्ता और संहर्ता है। काल में ही सृष्टि की सभी वस्तुएं समाहित हैं। सूर्य काल का प्रतिनिधि है। काल से ही सूर्योदय, सूर्यास्त, ग्रह नक्षत्रों की गति, पृथ्वी द्वारा परिक्रमा, वायु का बहना और सृष्टि की उत्पत्ति तथा प्रलय नियंत्रित है। वर्तमान, भूत और भविष्य का आधार काल ही है। काल ही जीवन और मृत्यु है। संसार का समस्त ज्ञान और विज्ञान काल के द्वारा नियंत्रित है। क कालो सर्वेश्वरो, ख काले नो देति सूर्य, काले नी विशते पुनः, ग कालाद ऋच सम भवन यजुः कालाद जायत, घ स इमा विश्वा भुवनानि अंजत, कालः स ईयते प्रथमो नु देवः। चार विवाह सूक्त। अथर्वेद का पूरा 14वां कांड विवाह सूक्त है। इसमें दो सूक्त और 139 मंत्र हैं। इसमें विवाह संस्कार की विधियों, पति पत्नी के कर्तव्य, विवाह संबंध का अविच्छेद्य होना, पतिव्रता, धर्म, पत्नी के अधिकार और कर्तव्य आदि का विस्तृत विवेचन है। पति अग्नि तत्व है और स्त्री सोमी तत्व है। पति धनात्मक है और स्त्री ऋणात्मक है। दोनों के संयोग से सृष्टि क्रम चलता है। स्त्री के कर्तव्यों में बताया गया है कि वह लज्जाशील हो, मधुरभाषिणी हो, पति और पति के परिवार वालों का सदा आदर करे, कुल परंपराओं का पालन करे, सास ससुर की सेवा करे। दूसरी ओर उसे गृह स्वामिनी और परिवार की सामग्री कहा गया है। वह परिवार की स्वामिनी है। वह वीर और योग्य पुत्रों को जन्म दे। क पत्युर अनुव्रता भूत्वा समनह्य स्वामृतायकम्, ख साम्राज्येधि श्वसुरेषु साम्राज्युत देवृषु, ग सुमंगली व्रतरणी गृहाणाम सुसेवा पत्येष्वशुराय शंभु, घ पितृभ्यश्च नमस्कुरु। पांच ब्रात्य सूक्त। अथर्वेद का 15वां कांड सूक्त 1 से 18 मंत्र 230 पूरा ब्रात्य सूक्त है। इसमें ब्रात्य का ब्रह्म के रूप में वर्णन किया गया है। उसे ही रुद्र, ब्रह्म, महादेव और ईशान कहा गया है। उसके विराट रूप से सारी सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। समाज शास्त्र की सृष्टि से यह सूक्त अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें अतिथि देवो भव का बहुत विस्तार से वर्णन है। अतिथि सत्कार को अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य बताया गया है। इसमें यहाँ तक कहा गया है कि सभी आवश्यक कार्यों को रोककर अतिथि सत्कार करे, जो ऐसा नहीं करता उसके सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। छ मधुविद्या सूक्त। अथर्वेद के कांड 9 सूक्त 1 के 24 मंत्र में मधुविद्या का विस्तृत वर्णन किया गया है। मधुविद्या का अभिप्राय है जीवन में माधुर्य गुण हो। द्युलोक, अंतरिक्ष, पृथ्वी आदि सभी पंचभूतों में मधुरता है। प्रकृति को सभी वस्तुएं मधुरता प्रदान करती हैं। मधुविद्या को ही मधुकषा कहते हैं। जो मधुविद्या को जान लेता उसके जीवन में मधुरता का वास होता है। क यो वै कषाया सप्त मधुनिवेद मधुमान भवति, ख मधु जनिषीय मधुवंशीषीय, मधुमान भवति मधुमद अस्याहार्यं भवति। सात ब्रह्म विद्या। अथर्वेद के अनेक सूक्तों में ब्रह्म विद्या का विस्तृत वर्णन, इनमें ब्रह्म ईश्वर जीव प्रकृति आदि का विस्तृत वर्णन है। ब्रह्म का अनेक नामों से अनेक रूप में वर्णन है। उच्छिष्ट ब्रह्म स्कंभ ब्रह्म रोहित ब्रह्म आत्म विद्या अध्यात्म ज्येष्ठ ब्रह्म महद ब्रह्म ब्रह्म विद्या अनर्डवान ब्रह्म विराट ब्रह्म विश्व सृष्टा आदि। इन सूक्तों में ब्रह्म ईश्वर और अध्यात्म का तथा अन्य दार्शनिक विषयों का बहुत विस्तार से वर्णन है। इनमें ईश्वर ब्रह्म जीव प्रकृति सृष्टि उत्पत्ति लोक और परलोक आध्यात्मिक विद्याएं दार्शनिक सिद्धांत और मनोविज्ञान का सूक्ष्म विवेचन हुआ है। इनके आधार पर ही उपनिषदों और भारतीय दर्शन की सृष्टि हुई है।